CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5।
रिमझिम पांचवी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, कुल पृष्ठ 152।
पृष्ठ 1 से 4 में पाठों की सूची, कुछ चित्र तथा अध्यापकों के लिए निर्देश हैं। पृष्ठ संख्या 5, पाठ 1, राख की रस्सी।
लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनकवसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था, चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण ये था कि वो बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा,
मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा।
एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भीड़े देते हुए कहा,
तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा।
इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया।
लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई।
क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो?
लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया।
इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूं।
इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। पृष्ठ 6। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया।
लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा,
पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना।
एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई।
अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, लड़की सोचकर बोली।
एक तरीका है।
उसने भीड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया।
भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले,
उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे।
उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया।
लड़की ने एक शर्त रखी,
मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी।
लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली।
अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। पृष्ठ संख्या 7।
लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई।
पृष्ठ संख्या 8।
अभ्यास।
भोला भाला। 1। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क: तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? ख: तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती?
शहर की तरफ। 1. मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क: मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? ख: उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? ग: तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहां रहते थे, घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी।
2. जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। उदाहरण के लिए, गेहूं, जौ।
3. गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। इन संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। लेह,
धातु।
शेरवानी,
भोजन।
तांबा,
खिचड़ी।
शहर,
वेशभूषा।
ख: हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो।
तुम शेर, मैं सवा शेर। 1. इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना होगा।
पृष्ठ 9।
तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो। उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। 2. मंत्री ने बेटे से कहा,
पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया।
क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ।
सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ।
बात को कहने के तरीके। एक, इस कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? क, चैन से जिंदगी चल रही थी।
ख, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी।
ग, मैं इसका हल निकाल देती हूँ।
घ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई।
दो, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था।
क, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो।
ख, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों?
पृष्ठ 10।
नाम 2। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। यहां तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बता रहे हैं। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो।
नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखु, फुदोरजे, ये क्या हैं? कोई खाने की चीज या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चों को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी।
सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। ये लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है।
इसी के साथ रिमझिम भाग 5 का पहला पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।